नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राजस्थान में प्रधानमंत्री जयपुर प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई है। आज दोपहर 1 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 284 दर्ज किया गया। उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराकर दूसरा टेस्ट जीत लिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर संचार, डिजिटल समावेशन और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य में हुई प्रगति की सराहना की है। श्री मोदी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक आलेख के बारे में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया साझा कर रहे थे। इस आलेख का विशेष है विकसित भारत के सपने को साकार बनाने में पूर्वोत्तर की भूमिका। प्रधानमंत्री ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव की भी सराहना की, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेक्सटाइल, पर्यटन के अवसरों और परंपरागत शिल्प के महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है। 3 दिन का अष्टलक्ष्मी महोत्सव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज सम्पन्न हो रहा है। इसका लक्ष्य इस क्षेत्र के 8 राज्य की सुंदरता, विविधता और संकल्पों को उजागर करना है। इन राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है। महोत्सव में 250 से अधिक कारीगर अपने बेजोड़ शिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों सहित 34 GI टैग से युक्त वस्तुएं प्रदर्शित कर रहे हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री जयपुर प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। यह योजना 18 से 70 वर्ष तक की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा के करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक बागवानी महाविद्यालय और बागवानी के 10 विषयों को कवर करने के लिए 5 विद्यालय होंगे। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के कमांडरों का 2 दिन का सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। सम्मेलन के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पश्चिमी कमान के कमांडरों के साथ चर्चा की और युद्ध तथा बहुक्षेत्रीय युद्ध कौशल में जीत हासिल करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने इस वर्ष के विषय भारतीय वायुसेना सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर पर बल दिया और भारतीय वायुसेना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सभी कमांडरों से सामूहिक क्षमता, दक्षता विकसित करने और प्रतिबद्धता का आह्वान किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कल उधमपुर में उत्तरी कमान मुख्यालय में सेना, वायुसेना और नौसेना की त्रिसेवा बैठक की अध्यक्षता की। हमारे आकाशवाणी ने बताया है कि सेना प्रमुख को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में सेना, वायुसेना, नौसेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सेना प्रमुख ने संयुक्त क्षमता को और बढ़ाने के उद्देश्य से चर्चा की अध्यक्षता की। सेना प्रमुख ने हाल ही में शामिल किए गए अत्याधुनिक हथियारों, उपकरणों और अन्य रसद संपत्तियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी रैंकों की उनके पेशेवर रवैये और संचालन में तालमेल हासिल करने की दिशा में कमान द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर साप्ताहिक संयुक्त समन्वित गश्त फिर से शुरू होने के बाद भारत और चीन के बीच तनाव कम होने के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक अध्ययन के अनुसार UPI ने वंचित समूहों को औपचारिक ऋण तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। ओपन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान क्रेडिट एक्सेस के लिए निहितार्थ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई के लाभ केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य देशों को भी इससे लाभ मिल सकता है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि ऋण वृद्धि के बावजूद डिफॉल्ट दरें नहीं बढ़ी है। वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने देश में वित्तीय लेन देन के तौर तरीकों को बदल दिया है। यूपीआई ने लगभग 30 करोड़ लोगों को और तकरीबन 5 करोड़ कारोबारियों को डिजिटल लेन देन के लिए सक्षम बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल वीरता, शौर्य और बलिदान के दम पर 6 दशकों से देश की सीमा सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने में लगा हुआ है। जोधपुर में आज सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि 1965 से देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने में सीमा सुरक्षा बल ने उत्कृष्ट कार्य किया है। गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के बिना देश की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव है। यही कारण है कि 25 बटालियन के साथ स्थापित किए गए सीमा सुरक्षा बल का निरंतर विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ, फर्जी नोटों और वामपंथी उग्रवाद को रोकने सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश की सीमा सुरक्षा संबंधी नीति कई वर्षों तक अस्पष्ट रही, परंतु मोदी सरकार ने इस बारे में गंभीरता से काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में देश के सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। श्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए हर वर्ष बजट में विशेष प्रावधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमा पर स्थित गांवों के लिए जीवंत ग्राम योजना शुरू की है, जिससे कि सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सम्मान, रोजगार और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। लगभग 3000 गांवों में प्रायोगिक आधार पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। गृह मंत्री ने बताया कि अर्धसैनिक बलों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इससे पहले श्री अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए वीरता पुरस्कार और पुलिस सेवा पदक प्रदान किए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई है। आज दोपहर 1 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 284 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी के कुछ क्षेत्रों में AQI 300 का आंकड़ा पार कर गया है। शादीपुर में 364, आनंद विहार में 360, जहांगीरपुर में 334, द्वारका सेक्टर 8 में 278, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 269, पंजाबी बाग में 300, आयान नगर में 232 और लोधी रोड पर 172 AQI दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिन तक सुबह और शाम के समय स्मोक और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। चंडीगढ़ एक सुरक्षित समाज सुनिश्चित करने और 3 नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के माध्यम से दंड से न्याय तक का सफर तय करके भारत के विकास में योगदान देने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेशों में से एक बन गया है। 3 कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अवधारणा औपनिवेशिक युग के कानूनों को हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित थी। चंडीगढ़ ने 5 महीने के भीतर यह उपलब्धि प्राप्त की है। मीडिया को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र यादव ने कहा कि ये कानून विकसित भारत को दर्शाते हैं। श्री यादव ने कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। इन कानूनों के तहत पेश किए गए नए प्रावधानों ने भारत की कानूनी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बना दिया है। उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं को चारों पवित्र धामों के शीतकालीन निवास स्थल जाने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ में ओकारेश्वर मंदिर में यात्रा का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। सर्दी के मौसम में ये भगवान केदारनाथ की मूर्ति का निवास स्थल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने की सरकार प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।